Godlywood Studios presents ब्रह्मकुमारीज पॉडकास्ट। जिंदगी बने आसान।
नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक ईश्वर भी आप पर भरोसा नहीं करेंगे। हम आज तक ये मानते आए कि ईश्वर ही सब कुछ कर रहा है, पर रियलिटी तो ये है कि हमारी ज़िंदगी हम खुद जी रहे होते हैं। हमारे जो कर्म है उसका प्रभाव हमारे पूरे जीवन पर पड़ता है, तो कहीं ना कहीं हमें अपने आत्मविश्वास को कभी भी खोना नहीं चाहिए। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर गिरीश पटेल जी। ओम शांति भाई जी।
ओम शांति।
वेलकम टू आवर शो।
नमस्कार
डॉक्टर साहब। हमारी पूरी सीरीज चल रही है मन की बीमारियों के बारे में। हमने कई सारे बीमारियों के साथ में डिस्कस किया, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिजीज और भी कई ऐसी बीमारियों के बारे में हमने चर्चा की। अब मैं जानना चाहती हूँ कि और कोई बीमारी है जिससे अभी तक हम पूरी तरह से डिस्कस नहीं किया है हमने।
एक इम्पोर्टेंट बीमारी है जिसको कहेंगे पर्सनालिटी डिसऑर्डर।
ओके।
ये भी कहा जाता है बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर।
जी,
है ना। एक वैसे है और पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी है।
ओके।
और बहुत सारे हैं इसमें।
जी,
जैसे न साइकोपैथ्स जो बोलते हैं ना, जिसको कहेंगे भी पैथोलॉजिकल पर्सनालिटी इसकी।
ओके।
या तो अलग अलग प्रकार से, जैसे कहते हैं डेफिएंट पर्सनालिटी भी अपोजिट हो करता है। माँ बाप बोलेंगे उससे बच्चा उल्टा ही करेगा।
मतलब रेबेलियस।
हाँ, रेबेलियस, उल्टा ही करेगा। और एक ये जो है बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, उसके भी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऐसी भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जहाँ वो व्यक्ति कुछ करना नहीं चाहता है।
ओके।
हमको समझ में नहीं आएगा, पेरेंट्स को लगेगा कि आलसी है।
जी,
है ना, उसमें मोटिवेशन की कमी है। परंतु थोड़ा जब एक कोई मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट अच्छे से देखे तो पता चलता है कि ये तो सचमुच उसको पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, एकदम वो ठीक हो सकता है।
डॉक्टर साहब, ये जो आप कह रहे हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये इसका कुछ अगर आप में डिफाइन करके बता सके कि एग्जैक्टली ये बीमारी है क्या?
एक तो ऐसे कि भी हम जिसे कहेंगे कि एक नॉर्मल पर्सनालिटी है।
जी।
अलग अलग प्रकार से समझाते हैं, इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी, एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी, टाइप ए पर्सनालिटी, टाइप बी पर्सनालिटी। परंतु यहाँ पर है कि उसका जो पर्सनालिटी है वह ठीक से नहीं है, एक डिसऑर्डर ही है उसका।
अच्छा।
जिसमें भी एक्सट्रीम जो मैंने कहा साइकोपैथिक पर्सनालिटी, कि उसके जो सिम्टम्स है वो स्किज़ोफ्रेनिया जैसे लगेंगे थोड़े से, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं, वो बचपन से ही है। वो छोटा है तब से ही कि भी वो कहीं भी गलत संगत में लग जाएगा, चोरी करने लगेगा, है ना, बचपन में शराब पीने लगेगा, सिगरेट पीने लगेगा, है ना, वो स्कूल में नहीं जाएगा। भले उसके अंदर भी कई बार कंफ्यूजन हो सकता है कुछ, लेकिन वो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट इसको डिसाइड कर पाएंगे कि क्या ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। जो बहुत सारे केसेस आमतौर पर साइकेट्रिस्ट के पास आते हैं कि एक तो ऐसे कि भी वो चोरी करने लगेगा, पड़ोसी के पास से भी कुछ चुरा लेगा।
okay.
ना, और उसको रियलाइजेशन नहीं है।
okay.
और ऐसा होता है कि भाई वो एज से कुछ भी, जैसे भी लड़कियां भी है कि भी 12-14 साल की लड़की आई भी किसी के भी साथ घूमने लगेगी, उनको कोई वो एक वैल्यूज है ही नहीं लाइफ में, एक नॉर्मल वैल्यूज भी नहीं, ऐसा लगेगा।
ओके।
हाँ, तो वो जो किसी को ये लगे कि भी गलत संगत हो गई ना, परंतु एक्चुअली वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, और ठीक से ट्रीट किया जाए तो वो एकदम नॉर्मल हो सकते हैं।
क्या मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर और पर्सनालिटी डिसऑर्डर दो अलग चीज है?
मल्टीपल पर्सनालिटी अलग चीज है।
अच्छा।
हाँ, अभी ये मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा कभी।
जी।
कि जो हम फिल्मों में भी देखते हैं ना कि भी मल्टीपल पर्सनालिटीज है, वो जैसे कि भी साइकेट्री में अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन है, वो लोग कुछ समय के बाद आपस में बैठ करके उसकी कई डिजीज की चर्चा करते हैं।
जी।
और उसमें अलग अलग नाम ऐड किए जाते हैं, क्योंकि जो समझ हमें आ रही है, जो रिसर्च हुई उसके आधार से, तो अभी जो है वो DSM-5 है।
अच्छा।
कि नहीं, वो पांचवा वो एडिशन है उसकी, कि जिसमें उन्होंने अलग अलग बातें बताई।
ओके।
हाँ, तो मल्टीपल पर्सनालिटी एक चीज थी।
अच्छा।
हाँ, तो और अब जो हम देखते हैं वो ये भी कह सकते कि भी बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर,
अच्छा,
डेफिएंट पर्सनालिटी या तो एंटी सोशल पर्सनालिटी कि वो सोशल से उल्टा ही करेगा।
ओके, मतलब बहुत ज्यादा रिबेलियस है बेसिकली। हाँ, उनको जो बोला जाता है वो उनके ऑपोजिट कर्म करते हैं,
वो एक प्रकार हो गया।
अच्छा,
ये जो मैंने कहा ना ऐसा भी, वो भी एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। अभी हमने केस ट्रीट किया क्यों, कुछ करना ही नहीं चाहता है। उसकी माँ एक्चुअली रिटायर्ड टीचर है, वो बेचारी अभी भी 68 उम्र में भी ट्यूशन कर करके घर को संभाल रही है, कि बच्चे को कुछ करना नहीं है। ना कहते तुम क्यों हो है ना, उसको अमेरिका पढ़ने के लिए भेजा तो भी वहां भी कुछ नहीं किया, आ गया। हाँ, क्योंकि मुझे कुछ नहीं करना है, कि जब तक और ऐसा लगता है कि तुम हो तब तक मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, और पेरेंट्स का भी लगाव है तो उसके लिए कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन भी नहीं लेंगे।
करेक्ट,
और इरिटेबल।
अच्छा, हाँ। तो अगर कोई व्यक्ति अपना कार्य नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा मतलब सोशल भी नहीं है और बहुत ज्यादा रिबेलियस है, तो उसको ये बीमारी होने की शंका है?
ऐसा नहीं, क्योंकि होने के कारण डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन भी ये सब उसके सिम्टम्स है।
अच्छा, दीज आर द सिम्टम्स।
सिम्टम्स उसके साइंस हो सकते हैं भी। साइंस क्या है, क्लस्टर ऑफ डिफरेंट थिंग्स।
ओके,
है ना, कि वो साइंस है
जी,
कि उसके आधार से पता चलेगा। आमतौर पर तो है ना साइकेट्रिस्ट के पास लोग जाएंगे ही नहीं, ये समझेंगे कि भाई ये कुछ कर रहा है ना, जैसे कि इसके फ्रेंड्स गलत है, इसको समझाओ ना और कुछ करो। साइकेट्रिस्ट के पास आमतौर पर नहीं जाएंगे, जब बहुत बढ़ जाएगा तब जाएंगे कि शायद दिक्कत हो रही है कुछ। जैसे कि इसने बहुत बड़ी चोरी कर दी, पड़ोसी के पास से चोरी की, पुलिस केस हो गया, फिर लगेगा करे तो समस्या, अभी साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। तो उस हद तक जब पहुंचे तभी साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। या तो कोई लड़की या लड़का बहुत कुछ उल्टा सीधा कर देवे तब लगता है कि ये तो हमारे बस में नहीं है, हम मैनेज नहीं कर सकते, हमको मनोचिकित्सक के पास जाना चाहिए। परंतु पहले ही समझ में आ जाए कि एक यह भी बीमारी है, इसका इलाज संभव है। तो बहुत सारे, मैं देख सोचूंगा कि शायद 20% ही ट्रीटमेंट करते होंगे, 80% तो ट्रीटमेंट नहीं करते होंगे। या तो उसको डराएंगे, धमकाएंगे, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे ना, परंतु ये केसेस ठीक से समझ में आ जाए तो उसके हम अच्छे से इलाज कर सकते हैं।
बिल्कुल डॉक्टर साहब, इस बीमारी में ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिसके वजह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई ये बीमारी है?
एक तो ये समझना है कि ये कहीं पे बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे एक तो है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, कि जिसमें भी बच्चा है ना थोड़ा हाइपर होता है, वो किसको मार भी देगा, स्कूल से भी शिकायत आएगी कि ये बच्चा मार रहा है ना, दूसरे बच्चों को पढ़ने नहीं देता इसे, है ना। तो शायद पर्सनालिटी डिसऑर्डर नहीं है, ये ADHD है। और उसकी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है।
अच्छा,
वो मेडिसिन तो एक दिन में वो शांत हो जाएगा,
एक दिन में?
हाँ, उल्टा माँ बाप तो कहते कि हमको इतना शांत नहीं करना है।
ओके,
बच्चा तो फिर वो डोज को कम कर दिया जाए।
हाँ हाँ,
और वहां पर वो स्पेसिफिक मेडिसिन है।
Okay.
वो एक ही बीमारी है जहाँ वो काम करेगी। अब अभी अगर पर्सनालिटी डिसऑर्डर है तो दवाई डिफरेंट होगी।
ओके,
कि जिसमें वो चोरी कर सकता है ना, उसके जो फ्रेंड्स है वो आवारागर्दी करेगा, और जैसे कहा कि और थोड़ा बड़ा होगा तो उसने बल पढ़ाई भी की लेकिन मुझे कोई काम करना नहीं है, तुम लोग हो ना मैं क्यों करूं। ये तो और कुछ भी कर सकता है कि भी ऐसा ऐसा होगा। अभी हमारा एक केस था कि वो मेरे ग्रह अभी खराब है वो मेरे ग्रह जब ये अच्छे होंगे ना तभी
मैं काम करूंगा,
लेकिन उसे जिंदगी भर नहीं करेगा।
वो एक बहाना है बेसिकली।
हाँ, तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर ना भी हो, ये सारा कंफ्यूजिव है।
Correct.
सिर्फ मैं इतना ही, जो हमारे दर्शक भाई, इतना ही मैं समझाना चाहता हूँ कि ये सब बीमारी का हिस्सा है और उसकी ट्रीटमेंट लो।
Okay.
ये नहीं समझो कि उसको डराओ, गुस्सा करो, मारो, या तो उसको चला लो। कई बार तो बहुत बड़ी समस्या तो ये होता है कि शादी कर लेंगे ना फिर अच्छा हो जाएगा।
ओके,
कई लोग भी कहते हैं कि भी उस पर है ना जिम्मेवारी आ जाएगी, फिर अपने आप कमाएगा, शायद जीवन भर नहीं कमाएगा वो, अगर आपने ठीक से उसका इलाज नहीं किया तो।
बिल्कुल,
तो ही समझ, या तो कई बार कि ज्योतिष के पास जाओ।
अच्छा,
है ना, कहीं अभी एक था वो कि भी पूरा हमने 30,000 रुपया खर्च करके पूरी विधि कराई, अभी ये लड़का अच्छा होने वाला है। एक्चुअली तो वहां पर ट्रीटमेंट की जरूरत है उसको, क्योंकि ये तो साइंस ने डेवलपमेंट किया है ना, और ये ऐसे ही नहीं कह रहे, देखेंगे तो लाखों केसेस पर ट्रीटमेंट हुई है, तब साइकियाट्रिक की टेक्स्ट बुक में ये बात आएगी कि ये बीमारी ऐसा है, इसका ये इलाज है।
ओके, मतलब काफी सारे लोग इसे फेस
कर रहे हैं। हाँ
डॉक्टर साहब, इधर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ, खास करके इस बीमारी को लेकर के, कि व्यक्ति काम नहीं कर रहा है अगर, जिसे इच्छा नहीं हो रही है काम करने की, और बुरे संगत में अगर वो पड़ रहा है, साथ ही साथ अगर वो बहुत ज्यादा चुप भी रहने लगा है, तो ये बीमारी के सिम्टम्स है। ये
ऐसे नहीं कि यहाँ पर बस इतना ही समझो कि हमें मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास जाना है। अब ये डिप्रेशन हो सकता है ना, ये सिज़ोफ्रेनिया हो सकता है, ये ADHD हो सकता है, या ये बाइपोलर हो सकता है, यानी पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो सकता है, वो सिम्टम्स सिमिलर लगेंगे, लेकिन एक एक्सपर्ट अगर 5 मिनट भी आपको 10 प्रश्न भी पूछेगा तो डिसाइड कर लेगा।
ओके,
और यूनिकनेस अगर थोड़ा सा अगर समझना भी है यूनिकनेस को, कि ये यूथ में भी है, हाँ बच्चों में है, तो इंटेलिजेंट हो सकता है, कि भी बच्चा पढ़े तो इंटेलिजेंट, लेकिन पढ़ नहीं रहा है ना, गलत संगत हो गई, सिगरेट पीने लगा, शराब पीने लगा, कैसे भी खराब से फ्रेंड हो गए उसके, और उसको उसकी कदर नहीं है कि तो क्या है, आप लोग बैकवर्ड हो ना, आप दूसरे जमाने में जी रहे हो, इस जमाने में तो यही सब चलता है, ऐसा वो बोलेगा।
ओके,
है ना, और समझ में आ जाए कि भाई ये ट्रीटमेंट ट्रीट किया जाए तो बहुत बड़ा चेंज हो सकता है। अधिकतर लड़कों में होता है, लेकिन लड़कियों में भी है
ये, बहुत ही आई थिंक सिंप्लीफाइड वे में आपने समझाने की कोशिश की है, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड
है। हुई को डायग्नोसिस डॉक्टर को करने दो।
करेक्ट,
हाँ, सिर्फ दर्शक भाई बहनों को इतना ही समझना है कि भी ये बीमारी है और इसका इलाज करना है, उसको डराना नहीं है, उसको बंधन में रखना नहीं है,
क्योंकि हमें लगता है कि ये इसका ध्यान नहीं है पढ़ाई पर, ये इसे ये जानबूझ करके ऐसा कर रहा है, हमें तंग करने के लिए कर रहा है। जबकि रियलिटी ये है कि उन्हें ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो मेडिकली इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है,
और दवाइयाँ खराब नहीं है,
बिल्कुल, और दवाइयाँ खराब नहीं है,
जैसे बुखार आएगी तो आप एंटीबायोटिक देंगे ना,
बिल्कुल,
एंटीबायोटिक की भी अपनी इफेक्ट है, जब जब भी मैंने एंटीबायोटिक लिया ना लगता मैं बीमार हो गया, कई बार तो ऐसा होता है कि भाई वो बीमारी से ज्यादा ही दवाई लेने से वो तो गई, समझो खांसी हुई तो खांसी गई, परंतु उसके बाद जो एंटीबायोटिक की इफेक्ट हुई उससे 2-4 दिन ज्यादा बीमार हो गया, परंतु वो तो गई ना खांसी, नहीं जाती तो और प्रॉब्लम होता है।
करेक्ट,
तो ऐसे यहाँ पर, यहाँ अगर ठीक से दवाइयाँ दी जाए तो इतनी साइड इफेक्ट भी नहीं है।
बिल्कुल डॉक्टर साहब, जनरेशन, आज के जनरेशन की बात करूँ, आई थिंक जो बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड होते हैं काम को लेकर के, एक्सट्रीम्स में अगर हम देखें कि आजकल के यंगस्टर्स ज़्यादा काम नहीं करना चाहते और पैसे ज़्यादा कमाना चाहते हैं, उन्हें ईजी मनी चाहिए, तो क्या ये भी उस बीमारी का ही कारण है, या वो उनकी लाइफस्टाइल ऐसी बनती जा रही है जिसके वजह से ये ऐसा बिहेव कर रहे हैं?
जी, वंडरफुल, एक तो ये चीज़ ठीक है कि भी कोई इंटेलिजेंट है वो सोचेगा कि मुझे बहुत हार्ड वर्क नहीं करना है।
करेक्ट,
मैं अपनी अक्ल लगाऊंगा ठीक से और फिर मैं पैसे कमाऊंगा, ना तो नॉर्मल भी है। लेकिन जो अभी एक बीमारी भी हो सकती है, इट कैन बी यू नो पार्ट ऑफ साइकोसिस या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, कि वो सिर्फ कल्पना में कर रहा है कि वो मैंने किताब पढ़ी है ना, मैजिक कि मैंने पढ़ा और उसमें है कि सोच के हम बहुत कमा लेंगे, बस मैं सोचता रहूंगा हो जाएगा और कुछ भी करेगा नहीं, है ना, वो किताब में भी ये नहीं लिखा गया है कि वो तो उल्टा कि तुम सोचोगे वो होगा, इससे ये बात नहीं कि तुम सोच के कुछ करोड़पति बन जाओगे, तो वो एक सिम्टम हो गया, और ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का भी सिम्टम हो सकता है।
ओके, बिल्कुल, हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, खास करके ये पेरेंट्स के लिए है, क्योंकि आज के जनरेशन मैंने देखा है वो बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि इजी मनी मिल जाए और स्टैग्नेंसी एक आ जाए, मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाए।
बिल्कुल,
तो ठीक है, मैं ये भी समझ गई हूँ कि ये बीमारी होती क्यों है। अब मैं जानना चाहती हूँ डॉक्टर साहब, कि सेल्फ हेल्प के थ्रू भी हम इससे ठीक हो सकते हैं?
बिल्कुल, बिल्कुल हो सकते हैं ना, कि एक तो ये अंडरस्टैंडिंग करनी है कि मुझे कुछ दिक्कत हो रही है, बच्चा नहीं कर पाएगा क्योंकि ये जो अधिकतर शुरू होता है ना बचपन में ही होता है।
ओके।
हाँ, 5-6 साल से शुरू हो जाती है बीमारी, तो तब पेरेंट्स ही उसको रियलाइज कर पाएंगे।
करेक्ट।
हाँ, और बड़े होने के बाद व्यक्ति को खुद थोड़ा उसमें रियलाइजेशन लाना है, पुश करना है अपने आप को, जहाँ बहुत सारी टेक्निक, मेडिटेशन हेल्प कर सकता है, साइकोथेरेपी हेल्प कर सकती है उसका रियलाइजेशन बढ़ाने में। और फिर पेरेंट्स को भी ये समझना है कि भी यहाँ पर ये कुछ दिक्कत है और उसका इलाज करना चाहिए।
करेक्ट।
और अब जो आपने बोला ना कि भी ये करना नहीं चाहते आजकल नौजवान, वहां ये बात समझने की जरूरत है कि एक जनरेशन गैप है बहुत बड़ा।
करेक्ट।
और वो इसलिए भी है क्योंकि भी जैसे हमारा जनरेशन और आपका जनरेशन है ना, कि जैसे भी हमारे जनरेशन से हमारे पेरेंट्स के समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, और जब हम हुए तो कोई टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा फर्क नहीं हुआ, टेलीफोन नहीं था, फोन आ गया, बस इतना सा फर्क शायद हुआ। लेकिन आपका जनरेशन वो आसमान जमीन का टेक्नोलॉजी में फर्क हो गया। तो इसलिए ना पेरेंट्स वो समझ नहीं पाते है ना। वो एक एड भी आती है ना कि भी ये बच्चा आलसी हो गया है।
करेक्ट।
कि वो बैंक में नहीं जाता है तो फट फट फोन से मनी ट्रांसफर कर देता है ना। तो भी वो टेक्नोलॉजी है कि भी आप फोन से सब बिल भर सकते हैं, मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, ऐसे बहुत कुछ है
ऑनलाइन।
हाँ, तो उन चीजों को भी पेरेंट्स को समझना है।
करेक्ट।
कि भी ये जनरेशन में डिफरेंस है तो होने दो, नॉर्मल है। लेकिन जब पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो जाएगा तो एकदम अपोजिट होगा। जैसे कुछ भी नहीं करेगा है ना, सिर्फ बहाने बताएगा, या जो मैंने और सिम्टम्स बताए
जी
वैसे सिम्टम्स हो जाएंगे।
बिल्कुल
है ना
जी। डॉक्टर साहब, अब मैं जानना चाहती हूँ डॉक्टर साहब, इस बीमारी से बाहर निकलने में क्या कोई ऐसी थेरेपीज है जो हेल्प करती है?
थेरेपी भी कुछ हद तक हेल्प करेगी।
ओके।
कि उसके साथ बैठ कर के अंडरस्टैंड करे, उसको हम समझे, है ना। इनडायरेक्टली अभी उसमें ना लेक्चर्स नहीं दिए जा सकते, सरमंस नहीं दिए जा सकते, उसको उसके पॉइंट ऑफ व्यू हम समझे। इस प्रकार से भी कि भी मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू को इस प्रकार से समझ रहा हूँ, और जो क्वेश्चंस हो ना वो इनडायरेक्ट हो।
ओके।
हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चंस ना हो।
करेक्ट।
है ना, इनडायरेक्ट। फॉर एग्जांपल ऐसे पेशेंट के बाद हम इतना सिंपल पूछते हैं कि भी तुम्हारे अपने फ्यूचर के गोल्स क्या है। वो खुद तो बोलेगा अरे मैं तो करोड़पति बनने वाला हूँ। तो फिर उसको ये बोलते हैं कि तुम अपना रोड मैप बताओ।
करेक्ट।
कि वहां पहुंचना है तुम क्या क्या करोगे। और वो सचमुच लिखेगा तो उसको भी आइडिया आएगा कि मैं कर नहीं रहा हूँ।
करेक्ट। क्योंकि वो इंटेलिजेंट तो है, खाली बस इतना है कि ये बीमारी के वजह से वो अपने आप को पूरी तरह से सक्षम नहीं बना पा रहे हैं काम करने के लिए।
कोई कोई इंटेलिजेंट नहीं होते।
अच्छा, इंटेलिजेंट
जो पर्सनल नहीं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर ADHD के जो पेशेंट्स है बहुत इंटेलिजेंट है।
ओके।
लेकिन पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले इंटेलिजेंट न भी हो, तो ये रियलाइजेशन कराने में साइकोथेरेपी हेल्पफुल हो सकती है।
okay.
और जब वो एक्सेप्ट करने लगे, चाहे थोड़ी सी मेडिसिन भी दी जाए, फिर वो डिफरेंट टेक्निक, फायर टेक्निक, इनर डेवलपमेंट प्रोसेस, निसर टेक्निक जो हमने आगे भी चर्चा की है, वो सब भी हेल्पफुल हो सकती है। अगर वो मेडिटेशन करने लगे खुद तो भी उसे बहुत मदद मिलेगी। और कई बार तो ड्रास्टिक स्टेप्स भी लेने पड़ते।
अच्छा।
मेरे कुछ हाँ ऐसे पेशेंट्स है कि जिन्होंने सिटी को ही बदल दिया।
ओके।
वैसी लड़की है, मैंने कहा कि भी कम है कि भी बॉम्बे में है, बेचारे कहीं नागपुर में चले गए कि बॉम्बे में उसके इतने खराब फ्रेंड्स ऐसे है कि भी हम रहेंगे तो इम्पॉसिबल है। कुछ कुछ केसेस में।
करेक्ट। एक्सट्रीम्स में।
हाँ, एक्सट्रीम्स में वो चीज भी हेल्पफुल हो सकती है, और काउंसिलिंग हेल्प करेगी, मेडिटेशन भी उसे हेल्पफुल होगा
जी।
और जब तक वो रियलाइजेशन न आए ना, हमें एफर्ट करनी है, छोड़ना नहीं है। जैसे नहीं इस प्रकार के तो रिमांड होम्स में होते, पता है आपको बॉम्बे में बहुत जगह पर होगा, जैसे लाइक एंटी सोशल है, उन बच्चों को वहां पर डाल दिया जाता है जब तक 18 साल के हो तब तक।
ओके।
है ना, तो वो भी उसमें आप देखो रिमांड होम में तो बहुत सारे पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बच्चे होंगे।
ओके।
जो एक क्राइम करते हैं उनमें भी कईयों को पर्सनालिटी डिसऑर्डर है।
डॉक्टर साहब, आज का जो ये एपिसोड रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। हम समझते थे कि हमारे जो बच्चे हैं वो आलसी हैं, या फिर उन्हें फोकस नहीं है, या फिर ज़िंदगी को लेकर के वो सीरियस नहीं है, पर रियलिटी तो ये है कि वो एक बीमारी के शिकार हैं।
कुछ लोग, सब
कुछ
नहीं।
लोग, बहुत ही कम लोग की संख्या होती है जिसमें पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक प्रॉब्लम हो सकता है, और अगर ऐसा हो तो हमें डॉक्टर के पास जाकर दवाई लेने में कोई भी हर्ज नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग इन द शो।
ओम शांति।
दोस्तों, आज हमने मन की बीमारियों की श्रृंखला में एक ऐसी डिजीज़ के बारे में जाना जिसका नाम है पर्सनालिटी डिसऑर्डर। हमने ये जाना कि कुछ व्यक्तियों को ये होता है, और उनके पेरेंट्स बचपन से ही अगर उन पर ध्यान दे कि वो बहुत ज़्यादा अगर चिड़चिड़ा हैं, या बहुत ज़्यादा रिबेलियस हैं, या बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, तो कहीं ना कहीं ये बीमारी होने की उनमें चांसेस हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर बच्चे में ये होता है, पर कुछ बच्चों में ये ज़रूर होता है। तो अगर आप डॉक्टर के पास जाकर, एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाकर सलाह ले रहे हैं, काउंसलिंग ले रहे हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। इससे आपके बच्चे का पूरा भविष्य और भी ज़्यादा उजागर हो सकता है। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में, जिंदगी बने आसान। ओम शांति।